ओम शांति। मधुर और बुलंद आवाज की ध्वनि बाबा की विशेष रत्न निर्विघ्न बन सबको निर्विघ्न बनाने वाली आदरणीय कविता दीदी जी हमारे बीच में हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है। जिस दिन अव्यक्त मुरली का जन्म हुआ उसी दिन आपका लौकिक जन्म हुआ। कौन सी डेट है वो? 21 जनवरी 1969। 1984 में आप विद्यालय के संपर्क में आए और 1989 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के अर्थ समर्पित कर दिया। आप लौकिक में लॉ ग्रेजुएट हैं, विद्यालय के नेशनल लेवल के स्पीकर हैं। आपने लगभग पूरे भारत एवं नेपाल में ट्रेवल कर राज्यों के माध्यम से लाखों लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है। आपने बहुत सारे नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स को लीड किया है, जैसे सद्भावना युवा साइकिल यात्रा, एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, बिजनेस टू सर्व द सोसाइटी आदि आदि। आपको राजयोग शिविर कराने में महारत हासिल है। ज्ञान के बहुत गहरे गहरे रहस्यों को बहुत सहजता से स्पष्ट करने में आपकी विशेष कला है। आप सदा लाइट रहते हैं, खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं और सबको उमंग उत्साह दिलाते हैं। और आपकी एक विशेषता है, आप में हमने हमेशा लव एंड लॉ का बैलेंस देखा है। वर्तमान समय चंडीगढ़ में सेक्टर 43 की सेवाओं के आप निमित्त हैं और अभी विशेष हमारे बीच में रखेंगे निर्विघ्न एवं खुशनुमा स्थिति कैसे बनाएं। आदरणीय कविता दीदी जी।
ओम शांति। सभी ठीक हैं आप? नींद आई थी दोपहर को? या कई लोग दोपहर को नींद करते नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, बाबा को याद करते हैं या फोन पर बातें करते हैं, कुछ ऐसा भी होगा। तो फिर उनकी विशेषता ये होती है कि जब शाम को योग में बैठते हैं तो फिर कैसा योग लगता होगा, क्योंकि सुबह तो जल्दी उठे थे। तो इसीलिए एक खास बात, निर्विघ्न स्थिति बनाए रखने का एक बड़ा अच्छा और पहला पॉइंट है कि अपनी दिनचर्या बहुत डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का समझौता ना करें। खुद बनाते हैं हम अपनी दिनचर्या और बाबा के श्रीमत अनुसार बनाते हैं, उसको लूज नहीं कि ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा कर दें, इस तरह की नहीं होना चाहिए। ये महीना मनमोहिनी दीदी जी का है और उनकी हम बातें सुनते आ रहे हैं। जब हम ज्ञान में आए थे तो उनको देह त्यागे हुए 6 महीने हुए थे, कुछ 5-6 महीने हुए थे। तो यज्ञ में उनकी बहुत बातें होती थी, उनको बहुत याद करते थे। तो उनकी ये विशेषता थी कि अगर वो इस समय, तब 6:30 मुरली होती थी, तो 6:30 बजे सुबह वो कहां पाए जाएंगे, मुरली क्लास में हाथ में नोटबुक और पेन लिए हुए। इसी तरह अमृत वेले में आप कहां मिलेंगे, नुमा शाम के वक्त कहां मिलेंगे, इस वक्त वो किनकी सेवा कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, पार्टीज या ग्रुप से मिल रहे हैं। तो इनकी उतनी सेट और बढ़िया दिनचर्या होती थी कि दूर बैठे उनकी सखियां, दीदी दादियां सभी बता सकते थे कि मनमोहिनी दीदी क्या कर रहे होंगे। तो इसीलिए ऐसी चीजें बहुत सारे विघ्नों और बातों से तो हमको वैसे दूर कर देती है, जो कि व्यर्थ के विघ्न बन जाते हैं ना। यूं ही कहीं टाइम पास कर रहे थे या टाइम वेस्ट कर रहे थे, उस वक्त अगर आप अपनी असली दिनचर्या और असली सेटिंग में होते श्रीमत अनुसार, तो जो व्यर्थ बोलने व्यर्थ सोचने से जो विघ्न आए वो नहीं आते। ऐसा है ना, नियम प्रमाण आप पक्के हैं किसी चीज में। अगर अमृत वेला में आप योग ही करते हैं सुबह 3, 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, उस वक्त आप फोन पर नहीं है, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं, तो यहां जो विघ्न आने चाहिए उस वक्त उन व्यर्थ बातों से वो विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि आप कहां बिजी हैं, बाबा के साथ बिजी हैं। तो इसीलिए हमारी जो स्थिति है निर्विघ्न स्थिति, ये जितना बोलने में आसान है या हम दूसरों को भी आप प्रवचन दे देंगे, ज्ञान सुना देंगे कि नहीं आप विघ्न विनाशक आत्मा है, भगवान को याद करो तो विघ्न नहीं आएंगे, ऐसी बातें आप दूसरों को भी सुना देते हैं, लेकिन जब अपने पर गुजरती है उस वक्त मेरी स्थिति क्या होती है ये चेक करने की जरूरत है। एक बहन ने पड़ोसी को, अपने ज्ञान में चलने वाली, तो उसने अपने पड़ोसन को किसी बात पे बहुत अच्छी तरह समझाया। वो बात क्या थी, पड़ोस में जो अच्छी पढ़ी लिखी ऑफिसर लेडी थी और वो बहुत दुविधा और टेंशन में थी, तो जो ज्ञान में चलने वाली बहन थी वो उनसे मिलने गई, उसको उसकी टेंशन पता लगी। वो टेंशन ये थी कि उसका बेटा विदेश गया, उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको विदेश भेजा, तो जैसे ही उसको विदेश के लिए रवाना किया, उस वक्त यूके का अभी भी मुश्किल है तो यूके का वीजा लगना मुश्किल था और बहुत मेहनत की उन्होंने, तो पहले वो कहाँ गया, फिर वहां से वहां गया, ऐसे करके और बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत पैसा इकट्ठा करके उसको यूके भेजा, तो जहां उसे जाना था पढ़ाई के लिए। और जो दुखद बात थी उनके लिए वो ये थी कि जिस दिन उसको एरोप्लेन में चढ़ाया, समझो आप उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर आए दिल्ली में, उसके बाद से उसका फोन एकदम बंद, कुछ नहीं पता कि वो उनका बेटा कहाँ गया। तो पहले तो भाई वहां पहुंच जाएगा, फोन करेगा, कुछ 18-20 घंटे 2 दिन तक इंतजार किया कि शायद टाइम नहीं सूट करता है भारत का और उसकी सेटिंग नहीं बैठ रही है, 2 दिन बाद फोन करेगा, 3 दिन बाद फोन करेगा, फिर उसे गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं फोन कर रहा है, फिर टेंशन होने लगी कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो। कुछ अनहोनी होती तो अखबार में न्यूज में कुछ तो आता, तो ऐसा सोच सोच के उनको अपने बेटे पर गुस्सा आता रहा और धीरे धीरे करते टाइम बढ़ता गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पता नहीं उसे जमीन निगल गई कि आसमान खा गया, कुछ नहीं पता। वो बच्चा जैसे मुक्त होना चाहता था उनसे और बस पीछा छूटा, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने मनाया था अपने माँ बाप को विदेश जाने के लिए, और उसके बाद उसने कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया। अब ये ज्ञान में चलने वाली बहन, ये उसे समझाती रहती थी, अब क्या समझाएगी जिसका कुछ पता ही नहीं लग रहा, सब सोर्सेज, जिस सोर्स से उनको भेजा था वो भी फोन करें, इधर उधर पूछें, इससे उससे पता किया, लेकिन कुछ नहीं पता लगा कि वो वहां पढ़ने वाली जगह पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। किसी दिन एक दिन पता चला उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो बस बहुत है, कुछ गलत हो जाता तो जल्दी समाचार मिल जाता, कुछ गलत नहीं हुआ इसीलिए कोई समाचार नहीं आ रहा। उस बेटे ने ना फोन किया ना अपना पता दिया। अब इस बहन ने उसको बहुत समझाया, ज्ञान सुनाया, कोर्स कराने के लिए लेकर आई, और वो कहती कि आप नहीं जानते मेरे मन की क्या हालत है, मेरे मन की टेंशन, फिर भी ज्ञान से, योग से, बाबा को याद करने से धीरे धीरे 10-15 दिन में वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी, रिलैक्स होने लगी, कि वो जहां रहे खुश रहे, अगर हमसे कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहता है, मिलना नहीं चाहता, उसकी मर्जी है, तो जहां भी वो रहे वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूं, ऐसे ऐसे करके उसने खुद को समझा लिया। जो बहन समझाती थी उसने अपना अनुभव सुनाया कि 2 साल के बाद सेम यही स्थिति उसके साथ हुई। वो अपनी बेटी को बहुत ज्ञान सुनाती थी, समझाती थी, लेकिन बेटी पर पूरा दुनियावी रंग चढ़ा हुआ था और वो बातें नहीं मानती थी। तो वो भी इस बात पर जिद करती थी, मुझे विदेश भेजो विदेश भेजो, मेरी फ्रेंड्स गई हैं वो गई हैं, ऐसे उसने बड़े अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल के पूरे सोर्स तैयार किया विदेश जाने का और वो गई। अब उसने 2 साल पहले बात सुन रखी थी, ये उसको भी थोड़ा बहुत भनक थी, मालूम था कि हमारे पड़ोसी के साथ क्या हुआ, और सेम बात उसने की, वो गई और उसके बाद उसका फोन बंद, नो कनेक्शन, कुछ नहीं पता वो कहाँ चली गई। तो ये बहन बताती है कि उसको समझाना दीदी बड़ा इजी था, खुद को समझाना बड़ा मुश्किल है। अब मैं ये भी नहीं कह सकती किसी के आगे रो रो के परेशान हो के देखो मेरी बेटी कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं है, तो वो अब अपनी पड़ोसन को भी नहीं बोल सकती ये सारी बातें कि मैं कितने टेंशन में हूं, मैं कितनी दुखी हूं। वो कहेगी मुझे तो बहुत उपदेश देने आ जाती थी ये। तो ये अपने मन का विघ्न, बाहर के विघ्नों से आप मुक्ति पा सकते हैं, अधिक बरसात हो गई, अधिक ठंड हो गई, कुछ चीजें नहीं मिली, कोई अभाव आ गया, कोई बीमारी आ गई, कर्म भोग आ गया, ये भी बहुत बड़े विघ्न है। धन की कमी हो गई, संतान कहना नहीं मानती है, लोगों की तरफ से विघ्न आए, धन की कमी से विघ्न आए, ऐसी बहुत सारी चीजें, कोई नौकरी चली गई, कोई बिजनेस में ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जो अपने मन का विघ्न है वो निरंतर तंग करता रहता है और वो बात आप हरेक से शेयर भी नहीं कर सकते। तब उसने कहा कि कितना मुश्किल था, मैं किस तरह से अपने आप को समझाऊं कि मेरी बेटी ने वही किया जो उसके बेटे ने किया, और उसका कम से कम 12 वर्ष के बाद पता चला, जब उसकी उसने शादी भी कर ली वहां, उसके बच्चे भी 2 हो गए जुड़वा, 12 वर्ष के बाद पता चला कि वो लड़की वहां ठीक है, जैसी भी है, मतलब जैसा वो अपना जीवन जीना चाहती थी वैसे ही है। तो 12 वर्ष में कितनी बार कितने संकल्प चले होंगे, ज्ञान में चलते हुए, बाबा को याद करते हुए, बहुत बाबा को सौंप दिया, सब कुछ होते हुए भी कितने संकल्प चले होंगे, पूरी लाइन इधर खिसक जाऊं। तो इस तरह से अपने आप को बहुत सारी चीजें समझाना, ये अपनी खुद की कला है, किसी दूसरे से सोचने और पूछने की जरूरत नहीं है, ये आप में ही वो कला होनी चाहिए जो हम अपने आप को समझा सके, और वो तब होगा जब हमें श्रीमत समझने की आदत हो। बाबा ने मुझे मुरली में क्या कहा, ये बात जब हमें समझने की आदत पड़ जाएगी तो हमारे लिए जल्दी ये इजी हो जाएगा कि अपने आप को समझा सके। अब जब निर्विघ्न रहेंगे तो खुश रह सकेंगे, खुश रहने के लिए अब जब डॉक्टर के पास लोग जाते हैं ना आजकल, डिप्रेशन टेंशन ऐसे कितना कुछ होता है, और डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं। अब एक तो बहुत मजेदार पेशेंट था, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन में रहता है, बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग, और इनके डॉक्टर्स कितने महंगे होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल की और बात है, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल्स में तो बहुत महंगे डॉक्टर्स होते हैं जो साइकी से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड आपकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो तो बहुत फीस लेते हैं। अब वो डॉक्टर इतनी सारी टेबलेट्स दे देता है, मेडिसिन दे देता है कि ये खाना रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, फिर ऐसे फिर वैसे, और वो सारी बातें समझा देता है, फिर ये सोचना ये मत सोचना ये भी समझा देता है, और सारी बातें समझा के क्या बोलते हैं, थोड़ा खुश रहा करो, थोड़ा आप इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा ये लाफ्टर क्या चैनल होते हैं ये देखा करो, है ना, चुटकले सुना देखा करो, उसको ये समझाता है डॉक्टर। अब उसे यही आता है, अब वो ये तो कह नहीं सकता कि भगवान के साथ अतीन्द्रिय सुख लो, गोपी बन जाओ, ऐसी बात तो वो समझा नहीं सकता, तो जो डॉक्टर को मालूम है वो डॉक्टर ने बता दी बातें। अब उसने ये सारी बातें बता दी, वो पेशेंट उसको पूछता है ये गोली बीपी की, ये गोली इसकी, ये दिन में, ये शाम को, ये सोने से पहले, ये सुबह उठते ही, खाली पेट, इसमें खुश रहने की गोली कौन सी है जी, वो दिखा के पूछता खुश रहने की गोली कौन सी है, होती है किसी के पास, खुश रहना संभव है गोलियों से, चीजों से, साधन सुविधाओं से, बहुत मिल जाए तो खुश रहने नहीं लग जाते, इच्छा है बाइक नई नई बाइक नई बाइक नई बाइक, और वो मिल गई, खुशी रहती है ना, दोस्तों को दिखाएं, कुछ दिन तो रहती होगी, है ना। बाइक में खुशी नहीं है, खुशी अलग से बाइक के साथ जोड़नी पड़ेगी कि अब इसका सुख हो गया, मैं जल्दी सेंटर पर पहुंच जाया करूंगा ना, रास्ते से अपने दोस्त को भी ले लिया करूंगा, है ना। उसको आपको बाबा से, ज्ञान से, खुशी से जोड़ना पड़ेगा मन से, तब जाकर खुशी रहेगी। ऐसे खुशी नहीं रहती है। हर साधन सुविधा को भी जब हम मन की खुशी से कनेक्ट करेंगे तब खुशी बनी रहेगी, लगातार रहेगी। चीजों से खुशी होती तो सब अमीर लोग खुश होते, लेकिन वो सब लोग टेंशन में रहते हैं। सब साधन सुविधाओं वाले खुश रहते। अगर अच्छे स्वास्थ्य से खुशी होती तो फिटनेस, जितने फिटनेस सिखाने वाले हैं, है ना, फिटनेस कोच, फिटनेस ट्रेनर और कितने ये जिम वाले, कितने पहलवान, सब खुश रहते ना। लेकिन रहते हैं क्या? कितना कंपटीशन, कितने परेशान, कितने टेंशन में रहते हैं, कितना गुस्सा आता है, कितना अहंकार होता है उनमें, उसकी वजह से दुखी रहते हैं। तो इसीलिए ये दुनिया वालों को नहीं पता कि खुश रहना किस चीज से जुड़ा हुआ है। मानते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि पहले खुश रहना सीखो, बाकी चीजें तो बाद में आएंगी। इसके लिए बाबा ने बड़ी सहज सहज बातें समझाई हुई है। बाबा का शब्द थोड़ा सा भारी और मुश्किल तो जरूर होता है। वो मुश्किल शब्द होता है साक्षी दृष्टा। ये छोटी सी बात नहीं है, पावरफुल स्टेज है। आप जितना साक्षी होकर रहते हैं उतना आपके मन की सिचुएशन अच्छी हो जाती है। साक्षी होने का मतलब है कि जो और जैसा है वैसा आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो स्वीकार कर लेना ये सोचने से ज्यादा करके देखने की जरूरत है। तो जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं कोई भी चीज को, अब जो मेरे साथ साथी हैं क्लास के भाई बहन, वो सब एक जैसी नेचर के तो नहीं होते हैं। जब आपके घर में पैदा होने वाले भाई बहन एक जैसे नहीं हैं, एक खून का रिश्ता, तो जो मुझे मिले हुए हैं साथी भाई बहन सेंटर पर, फिर क्लास में आने वाले 150-200 भाई बहन, तो वो एक जैसे कैसे होंगे? अच्छा, उनमें एक जैसी कुछ बात तो है कि वो सारे के सारे श्रीमत को जानते हैं, सबके सब श्रीमत को मानते हैं। धारण कोई कितना कर सके ये उसके ऊपर है, वो उसके हाथ में है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं आपके साथ भी, हम देखो सबके जो जैसे स्वभाव है वैसा जानकर उनको चलाने की कोशिश करते हैं। जिसकी थोड़ी सी नाजुक सी नेचर है, जिसको थोड़ा फीलिंग आ जाती है, हमें पता लग गया एक दो बार में उसको कुछ समझाने की कोशिश की, हमें पता लगता है इसको फीलिंग आ जाती है, तो उसके साथ वो बातें नहीं करनी है। क्योंकि संगम युग में अपना और उसका चार्ट मैं क्यों खराब करूं? वो जैसी आत्मा है उसको वैसा स्वीकार कर ले। मैंने ठेका नहीं ले रखा उसको राजा बनाने का। किसने ठेका ले रखा है? कितनी बार मुरली में बाबा कहते हैं मैंने ठेका उठा रखा है, आपको कहा आपने ठेका उठा रखा है? वो क्योंकि स्थापना किसने करनी है? ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा द्वारा स्थापना है ना, और शिव बाबा की श्रीमत अनुसार करनी है, जैसे शिव बाबा कहेंगे वैसे करनी है। तो स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही गाई जाएगी, आप चाहे कितना मर्जी जोर लगा लो। आपका नाम लिखा जाएगा क्या कहीं? एक भाई ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, वहां किसानों ने और कुछ किसान और ये जो दूसरे होते हैं कुछ ये बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी। तो वो रेल की पटरियों पर बैठ गए और 15-20 दिन तक ट्रेन्स रही बंद। तो जितना अच्छा ग्रुप तैयार कर रखा था, बहुत बहुत अच्छा कुमार, पुराना कुमार, बहुत मेहनत करके वीआईपी ग्रुप तैयार किया उन्होंने। तो वो वीआईपी ग्रुप तैयार किया, लेकिन ट्रेन ही कैंसिल थी, ट्रेन चल ही नहीं रही थी। उन्होंने धरना दे रखा था, अब वो धरने पर थे और ट्रेन के ट्रैक सारे जाम थे। अब बहुत, एक नहीं हजारों, हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स पर, अलग अलग स्टेशंस पर हरियाणा के, तो नहीं चली ट्रेन और पूरे पूरे 40 लोगों की टिकट कैंसिल करानी पड़ी। कहते मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बाबा के कमरे में रोज बैठ के कहता इनका धरना हटा दो, इनको ये कर दो, ट्रेन चला दो, बाबा लेकर जाना है मैंने, लेकर जाना है मैंने, मतलब बाबा वो करे जो मैं चाहता हूं कि बाबा वो करे जो होना है ड्रामा में, जो होना है वही होगा ना, पर बाबा को करना तो चाहिए ना, बीके की कहनी तो माननी चाहिए ना, उसका इतना लाडला बच्चा है, वो इतनी सेवा करता है, 40 लोग उसने तैयार कर रखे हैं, हम नहीं करते, बारिश आने को हो जाती है, पंडाल लगा रखा है, टेंट सजा रखे हैं, प्रोग्राम होने वाला है, क्या पीछे पड़ जाते हैं, बाबा बादल हटाओ, बारिश होनी नहीं चाहिए, हट भी जाते हैं लेकिन 15-20 मिनट बरस के ही हटेंगे, वो गीला गीला करके ही हटेंगे, हमारे संयम की धैर्य की परीक्षा लेकर कि वो जो होना है वो होकर रहना है, तो वो सारे के सारे 40 आ नहीं सके तो बड़े दिन उसने 15 दिन तक ये तपस्या की, अमृत वेले ये वो अच्छे अच्छे सीन बनाए, सब ठीक हो रहा है, जैसे सुन लेते हैं क्लासेस में ना भाई 21 दिन करो, 15 दिन करो, ऐसे करो, सब ठीक हो रहा है, धरना हट गया है, सब किसान खुश होकर जा रहे हैं अपने अपने घर, और ट्रेन चल रही है, बहुत विजन बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ और ट्रेन नहीं चली और वो 40 के 40 नहीं आ सके मधुबन में, तो क्या करना चाहिए? साक्षी होकर रहना मींस स्वीकार, जो होना है ड्रामा में वही होकर रहेगा, मैं चिंतित होकर परेशान होकर कैसे ड्रामा को बदल सकता हूं? वो उन्होंने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताई, कहते जिस दिन आना था उस दिन अमृत वेले मैं सोच रहा था आज भी कुछ चमत्कार हो जाएगा, आज कुछ चमत्कार होने वाला है, तो चमत्कार ये हुआ कि अमृत वेले बाबा ने मुझे टच किया कि तुम उठो और त्रिमूर्ति के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ। मैं त्रिमूर्ति के चित्र के सामने बैठ गया, बार बार मेरी आंखों के आगे त्रिमूर्ति का चित्र आ रहा था। तो बहने बाबा के कमरे में योग करती थी, वो सेंटर पर रहते थे और उन्होंने वो क्लासरूम में योग करते थे, तो क्लास हॉल में त्रिमूर्ति के चित्र के आगे जाके बैठे और बैठकर उन्होंने देखा, ध्यान से पढ़ा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, और वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से पढ़ा और कहते मैं जोर जोर से हंसने लग गया, अकेला ही अपना नाम लेके बोलता है, कहां लिखा है तेरे द्वारा स्थापना, तू कुछ भी कर, 40 ले जा, 4000 ले जा, कुछ भी कर, कितने मर्जी देवता बना, कितने मर्जी सेंटर खोल, कितना मर्जी कुछ कर, लेकिन मेरे द्वारा स्थापना तो नहीं गाई जाएगी, गाई जाएगी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है, गए नहीं गए क्या हुआ, फिर चले जाएंगे, उनका समय नहीं था, अगली बार चले जाएंगे, आ गए वो फिर कभी ना कभी तो आ ही गए सभी। तो हम हमारे जो कंट्रोल में नहीं है चीजें उसकी वजह से परेशान होना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बरसात आपके कंट्रोल में नहीं है, लिखा हुआ था प्रोग्राम सुबह आपकी फोटो होगी, हुई दोपहर को, खाने में आप लेट हो गए ना थोड़े थोड़े, पर खाना तो मिला ना सभी को, तो बस फिर तो ये सारी चीजें हमें पता है और हम दूसरों को बताते हैं, पूर्व निर्धारित है, प्रीडेस्टाइंड है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है रट्टा लगाने की, ये बात तो यहां अंदर खुद ही हुई होनी चाहिए, खुद जाए अंदर कि जब सब कुछ उसी अनुसार होना है, मुझे जो मिले हैं वही मिलने वाले हैं, जो मेरे युगल हैं, जो मेरे बच्चे हैं, के चेंज हो जाने चाहिए, ज्ञान में चलने वाले बच्चे हो, ज्ञान में चलने वाली बहू हो, उसके हाथ के आराम से मैं रोटी खाऊं, लेकिन हो तो नहीं रहा ऐसे, है ना, कुछ कुढ़ना, कुछ अंदर सोचना, कुछ टेंशन, कुछ कभी बनाना, कभी बनाने को दिल नहीं कर रहा है, और कितना कहती हूँ इसको, भाई तू ज्ञान में चल पड़, लेकिन वो चलती नहीं है, धारणा में नहीं चलती, तो ये तो होगा ही होगा ना। तो इसीलिए अपने आप को सब बातें बहुत अच्छी तरह समझा लें। भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ है कि तुम सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये वाली बात लिख के उसे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो वो मैं करूंगा ना सब पापों से मुक्त। ये तो भगवान ने कहा ही नहीं कि तू सब पापों से मुक्त होकर मेरे पास आ। मैं करूंगा तो वो मेरा स्टाइल है, मुझे पता है कैसे करना है। फिर लिखा हुआ है मा शुच। मा शुच मतलब मत सोचो, तुम चिंता मत करो। सबने अपने अपने घरों में सेंटर्स पर बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी है, कौन सी? तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं। और जब आप चिंतित होते हैं तो बाबा को बोलते हैं बाबा बैठे ही रहोगे क्या, उठ जाओ। मुझे बहुत चिंता हो रही है और आप बैठे ही हो। वो कह रहा है जब मैं बैठा हूं तो तू भी बैठ जा, तुम उछल क्यों रहे हो, चिंता में परेशान टेंशन उछल रहे हो। मैं बैठा हूं तुम भी आराम से बैठ जाओ, क्योंकि होगा वही जो होना है। इसीलिए इन बातों में परेशान होने की जरूरत नहीं। मा शुच। हम बहुत छोटे थे जब आदरणीय जगदीश भाई जी ने इस पर क्लास कराई थी। उनकी क्लास तो बहुत लंबी थी, हमें याद है। छोटे थे मींस सेंटर पर रहते हुए 4 वर्ष हुए थे। अब 4 वर्ष वाली सारी बहनें इकट्ठी हुई थी, छोटी छोटी बहनें, और सबको वो जगदीश भाई जी दादी जैसे थे, एकदम बहुत बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी आदरणीय जगदीश भाई जी। और बहुत गंभीर से दिखते थे लेकिन क्लास कराते थे तो बहुत रमणीक होते थे। तो उन्होंने कम से कम 1.5 घंटा इसी बात पर क्लास कराई कि किस तरह से हम भगवान को अपनी सब बातें और चिंताएं सौंप कर मां शुच वाली स्थिति में टिके रहें। सब कुछ बाबा ने करना है, सब कुछ ड्रामा ने करना है, तो मैं तो बीच में सिर्फ निमित मात्र एक मोहरा हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं। तो मैं वो इंस्ट्रूमेंट परेशान क्यों हो रहा हूं, है ना? इंस्ट्रूमेंट या निमित परेशान थोड़ी होता है। निमित को तो पता है कि डायरेक्शन मिला और करना है बस। तो मैं तो निमित मात्र हूं, मुझे तो बस करना है। वो तो टीचर से रिलेटेड बातें थी, टीचर्स को बहुत कुछ समझाना था, बहुत पावरफुल बनाना था। तो इसके लिए वो उनकी बहुत पावरफुल क्लास थी, कहीं ना कहीं जरूर उसकी ऑडियो होगी। लेकिन हम ये समझते हैं घर गृहस्थ में रहने वाला वो भी तो उतने ही पावरफुल होने चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो बैठी हुई मूर्तियां हैं जो बैठी हैं अपने अपने मंदिर में। जब प्रोग्राम होता है बाहर जाते हैं, बाहर प्रोग्राम करते हैं और आ जाते हैं, तो उनके तो दर्शन करने मूर्तियों के तो आते हैं ना, सब सेंटर पर ही आते हैं। लेकिन जो घर गृहस्थ में रहने वाले अधर कुमार माताएं भाई सब हैं, वो क्या हैं? वो तो चलते फिरते क्लासेस हैं, चलते फिरते म्यूजियम हैं। उनको तो सब जगह लोग देखते हैं, सब जगह दिखाई देते हैं कि आप क्या क्या करते हैं। दूसरे को अपने घर के सामने खाली जमीन पर, खाली स्थान पर भी स्कूटर पार्क नहीं करने देते। बड़े शहरों में बड़ी प्रॉब्लम है, आपके नवरंगपुर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने देखा दिल्ली में मुंबई में ये वो कितना फिक्स होता है किसकी गाड़ी कहाँ पार्क की जाएगी। विजिटर आ गया, बाहर आ गया, तो उसकी गाड़ी कहाँ पार्क की जाएगी और कौन किसकी जगह गाड़ी पार्क कर देता, उस पर महाभारत होते हैं, वहां लड़ाइयां होती हैं, पुलिस केस बनते हैं। तो सोचो एक बीके होकर अपनी गाड़ी गई हुई है, बेटा 5 दिन के लिए गया हुआ है, अब उस जगह पर अगर 3 स्कूटर कोई पार्क कर देता है तो आपका क्या बिगड़ जाता है? वो कोई जगह घेर थोड़ी लेगा, है ना? वो कोई कब्जा थोड़ी कर लेगा, स्थान तो वो है ही नहीं आपका, सरकारी स्थान होता है। लेकिन उसके पीछे स्थिति खराब कर लेना, झगड़ा कर लेना, फिर वो दूसरे क्या बोल देंगे मनी मन? आपके सामने नहीं बोलेंगे तो पीछे से बोलेंगे, ये देखो ओम शांति वाले, मतलब खाली जगह पर स्कूटर भी नहीं पार्क करने देते हैं। ऐसी रोज कितनी बातें होती हैं जहां पता लग जाता है कि कितना मुझे ऐसा होना चाहिए जो मैं दिखाई दूं और वैसा दिखाई दूं जैसा मुझे बाबा देखना चाहते हैं, जैसा मुझे बाबा दिखाना चाहता है दुनिया को, मुझे वैसा होना चाहिए ना। बाबा ने कहा तुम मेरे शो केस के शो पीस हो, तो शो पीस मैं हर जगह दिखा सकूं कि देखिए यहां आने से ऐसा बन जाते हैं, तो बने तो है ही नहीं। कई लोग तो ऐसी बात भी बोलते हैं कि ये आपके अलग अलग तरह के बीके होते हैं क्या, कई बीके हैं जो बस प्याज लहसुन नहीं है, शादी में ब्याह में कहीं भी खा लेते हैं, बस प्याज लहसुन नहीं है ना, दही खा लो, चावल खा लो, ये खा लो, वो खा लो। और कई इतने पक्के हैं, घर से खा पी के आते हैं और बस मुस्कुराते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, एक केला उठा के खा लेते हैं बस, या थोड़ा सा फ्रूट बस। तो ये अलग अलग तरह के बीके होते हैं। वो बीके देखो अच्छी तरह खा रहा है सब जगह, ये बीके तो नहीं खाते हैं, तो ये तो बड़े नाम रोशन करने वाले हो गए। फिर आप क्या कहते हैं, हाँ वो थोड़ा नया नया है ना, अभी उनको पूरा समझ में नहीं आया है ज्ञान। वो कहेगा अच्छा समझ में आएगा तो वो आप जैसा बन जाएगा, फिर तो और भी मुश्किल बात है। तो इसीलिए अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए जैसी जो श्रीमत है मुझे क्लियर जितनी समझ में आ गई, कई बातें तो समझ में आई नहीं है, जो समझ में आ गई है उस पर पूरा पूरा चलना है। और जब पूरा चलने लगे और छोटे मोटे कोई बातें आ भी जाएं, कोई विघ्न आ भी जाएं, तो फिर उसकी चिंता कौन करेगा, बाबा करेगा कि आप करेंगे? बाबा करेगा ना, क्योंकि कहा किसने है, बाबा ने कहा अमृत वेला योग करना है। अब उसके लिए आप किसी के घर गए हैं, ये लोग मेहमान क्या सोचेंगे, सुबह सुबह उठ के मुंह आप धो के खटर पटर करने लग गए, ये वो कुछ भी सोचें, यही सोचेंगे ना बड़े भगत हैं जी ये तो, सुबह सुबह उठते हैं अपना नियम नहीं तोड़ते, अच्छा ही सोचेंगे कुछ। पर आप ये सोचकर कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो क्या सोचेंगे, इसीलिए चद्दर ओढ़कर सोए रहे, अमृत वेला उठे ही नहीं, लेटे लेटे बाबा को याद कर लेते हैं, लेटे लेटे में पता ही नहीं चला फिर से खराटे गूंजने लग गए, फिर से नींद आ गई। ऐसे थोड़ी बाबा याद आता है, सिस्टम है कि जब किसी से मिलने जाना है, किससे, किसी से किससे, अमृत वेले किससे मिलने जाते हैं, बाबा से मिलने जाना है, ऐसे ही बासी बासी से, भाई शरीर भी को ठीक बिठाना है ना, रथ को भी तो ठीक संवार के बिठाना है, तो उसको मुंह धो के फ्रेश होके एकदम चौकन्ने होकर और एकदम जागृत होकर बैठना है। बेड पर योग करने की आदत, बेड पर तो सोने से पहले योग करना होता है, आधा घंटा आपने बाबा के कमरे में या कहीं भी योग किया, सोने से पहले फिर 5 मिनट, बेशक सारे दिन में चाट दिया, फिर से चाट देना है अपना, 5 मिनट चाट दे के बाबा को याद करके गुड नाइट करके सोना। उठने के बाद सुबह बैटरी चार्ज करके भेजी है, आप सोए कहाँ, बाबा के पास, सूक्ष्म लोक में, परम धाम में, वहीं जाके सोए ना, बाबा ने लाइट की चादर डाली आपके ऊपर और आपको सुला दिया और सारी रात आपकी बैटरी चार्ज हुई। तो बैटरी चार्ज हो गई, उसके बाद आप सुबह उठे एकदम चैतन्य, एकदम जागृत, अच्छी अवस्था में। जब आप उठ गए तो उस बेड पर योग नहीं करना है, उस पर तो ऐसे समझना चाहिए कोई कोबरा सांप बैठा है, डस जाएगा अगर यहीं बैठे बैठे लेटे लेटे योग करने की कोशिश की तो। आपके वहां ठंड कैसी होती है मालूम नहीं, पंजाब हरियाणा हिमाचल में बहुत ठंड होती है, तो ऐसा मन को समझा लेते हैं, वो रजाइयां ओढ़ते हैं मोटी मोटी, फिर उस रजाई को ऐसे ओढ़ लेते हैं और बैठ जाते हैं बिल्कुल टिक के रजाई में बैठ के योग कर रहे हैं। वो भाई बहन फिर अपना अनुभव खुद सुनाते हैं हंस हंसकर कि वो रजाई सहित ऐसे जैसे मंदिर में मूर्ति बैठ गई हो ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में मंदिर सहित मूर्ति लुढ़की हुई होती है। जिसको बाबा ने एक बार कहा था जैसे गेहूं की बोरियां बैठ जाती हैं, गेहूं की, मैदा की, चावल की बोरी बैठ जाती है ना, ऐसे बैठ जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, सारा दिन आप स्वेटर जैकेट टोपी पहनकर घूमते हैं ना सर्दी में, वैसे ही पहनकर अलग सोफा पर, चेयर पर, नीचे आसन बिछाकर, गद्दी बिछाकर बिल्कुल जागृत होकर बैठना है। उठने के बाद तो बेड पर योग करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बेड पर चद्दर रजाई कंबल बिल्कुल वैसे समेट दिया जाए कि अब दिन में 2:30-3 बजे से पहले उसको खोलना नहीं है, इस तरह की अवस्था होनी चाहिए। ये थोड़ी खुला ही पड़ा हुआ है, एक बार योग करके आ जाऊं अमृत वेला, फिर उसको लालच से देखते हैं कि अमृत वेला योग करके आ जाऊं, फिर इसी में जाना है। ये कौन सी मंजिल है? आज तक हमने ऐसा नहीं सोचा। कुछ कारण ये कि वह क्लास जल्दी होती है, 5:20 पे भाई बहन आना शुरू हो जाते हैं। कितनी भी ठंड हो, कितनी धुंध हो, फॉग हो, 5:20, 5:30 आना शुरू हो जाते हैं। 6 तक योग करते हैं, 6 सफेद लाइट होती है, 7 के रिकॉर्ड पे मुरली खत्म हो जाती है। तो इसीलिए कोई चांस ही नहीं है कि अमृत वेला योग करके आप सो जाओ। तो इसके लिए पहले से ही इतनी आदत डालनी होती है, सबके सब प्रिपेयर रहते हैं, क्लास वाले भी, घर में रहने वाली बहन भाई भी। अमृत वेला मीन्स जाग गए सो जाग गए, अब दिन में भोजन के बाद ही रेस्ट करना है। अमृत वेला योग करके सोना वो ऐसा हो गया, ये बात भी एक बार चंद्रमणि दादी ने बताई थी। कहते अमृत वेला योग करके सो गए मीन्स रात को योग किया था, वो अमृत वेला नहीं किया था, वो तो रात को किया था योग। वो तो ऐसा हो गया जो योग करके पूरा सो गए, नींद कर ली, उसके बाद उठ रहे हैं 1 बाद, क्योंकि जल्दी से 15 में नहा धो के तैयार होंगे, क्लास में जाके बैठ जाएंगे 6:30-7 जो भी जहां जिसके पास टाइम होता है। तो इसीलिए अमृत वेला योग बेड पर, जोर से बोलिए, आप घबरा क्यों गए, नहीं करना है। और योग करने के बाद सो जाना है, नहीं सोना है। तो क्या करना है नहीं सोएंगे तो? मुरली ही पढ़ना है, क्योंकि मुरली पढ़े बिना नाश्ता करना अलाउड ही नहीं है। ये बचपन से भक्ति की तरह धारणा हमें फिक्स हो गई थी कि मुरली पढ़े या सुने बिना नाश्ता नहीं करना है। तो आपको मुरली पढ़नी ही पड़ेगी नाश्ते से पहले। जो भी नाश्ता आप करते हैं, हल्का करते हैं, भारी करते हैं, लेकिन आप नाश्ता करेंगे ही नहीं मुरली पढ़े या सुने बिना। तो जो शाम को क्लास करने आते हैं सेंटर पर, उनका क्या होगा फिर? उनका क्या होगा? वो तो आते ही शाम को है, वो तो नाश्ता लंच सब कुछ कर चुके होते हैं, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है क्या? है ना सिस्टम। आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम है कि मोबाइल में आपके पास सब कुछ है। तो मुरली ही पढ़नी है उसी डेट की, उसी दिन की। ये तो बहुत लक्की हैं आप। जैसे बहन बता रही थी 1984 में जब हम ज्ञान में चले थे, तो उस वक्त मुरली मधुबन से जो जाती थी वो मोटा खद्दर जैसा कागज होता था, बड़ी बड़ी ऐसे साइक्लो स्टाइल वाली मुरली होती थी, एक एक बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेज होता था। और वो मुरली ज्यादा दिन रख ही नहीं पाते थे, पहले पीली पीली होती थी, फिर वो कट जाती थी बीच में से, वो पेपर ऐसे होते थे वो पेपर। आजकल जैसे फाइन पेपर नहीं थे तो, और ना ही इतने सुंदर उसमें आजकल वाली प्रिंटिंग थी, तो यहाँ साइक्लो स्टाइलिंग की मशीन थी। हम खुद यहाँ मधुबन में सेवा करते थे, बहुत हर डिपार्टमेंट में लगभग सेवा करते थे जिसमें हम कर सकते थे। तो मुरली के भी धागे बांधने जाते थे, मुरली उसमें एनवेलप्स में डालते थे, लिफाफों में डालते थे, फिर उस पर धागा लपेटते थे। और हमारे साथ एक अर्जुन दादा होते थे, मनमोहिनी दीदी के भाई थे ऐसा सुनने में आता था। तो अर्जुन दादा धागे बांधने की सेवा करते थे, हम भी उनके साथ करते थे ये सेवा। तो सोचो कि वो मुरली आपके पास सेंटर पर हमेशा लेट ही पहुंचती थी। उसी डेट की मुरली पढ़ना ये जानकी दादी ने शुरू करवाया था सिस्टम, के पहले मुरली पहुंचे और सेम डेट की मुरली जो मधुबन में पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाएगी। ये लगभग 1991 के बाद शुरू हुआ था, 92 के बाद। उससे पहले सब सेंटर्स पर अलग अलग डेट की मुरली होती थी, और वो मुरली सेंटर पर ही मिलेगी और पढ़ने के बाद मिलेगी आपको। तो जब सेंटर पर पढ़ी जाएगी, पता लगता था अगस्त में जुलाई की मुरली चल रही है, क्योंकि लेट लेट मुरली पहुंचती थी, बाय पोस्ट पहुंचती थी। तो वो मुरली हमें पढ़ने के बाद, हम दीदी से इकट्ठी मुरलियां ले आते थे, 8-10 मुरलियां, फिर उसके बाद ट्रेन में जाना है, कहीं जाना है तो मुरली पढ़ते थे पहले। घर में अगर स्कूल में जाना है जल्दी, कॉलेज जाना है जल्दी, तो अगर नहीं सेंटर पर जा सके तो वो मुरली पढ़कर जाते थे जो घर में रखी रहती थी। लेकिन वो तब मिलती थी जब सेंटर पर सुनाई जा चुकी है, उसके बाद मिलती थी। तो अब आप सोचिए आजकल कितनी सुविधाएं हैं, आप सेम डेट की मुरली दीदी से पहले पढ़ लेते हैं, दीदी तो पढ़ के सुनाएगी, अभी उससे पहले आप अमृत वेला पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मुरली पढ़े बिना नाश्ता पानी का कोई मतलब नहीं है, नाश्ता करना ही नहीं है। तो जब इतनी सहज धारणाएं हो, इन बातों का चार्ट रखने की क्या जरूरत है, ये तो अनिवार्य है। जैसे कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में, तो ये तो कंपल्सरी बातें हैं। एक ब्राह्मण के जीवन में उसकी क्वालिटी अच्छी बनाए रखने के लिए चार्ट तो ये रखना है कि 8 घंटे योग किया या नहीं किया, फिर उसके बाद योग लगा कैसा, सारा दिन साक्षी अवस्था रही कि नहीं रही, चार्ट तो ये चीजों का होता है। मुरली पढ़ी या नहीं पढ़ी, योग किया नहीं किया, अमृत वेले नुमा शाम किया या नहीं किया, ये चार्ट की बातें नहीं है। ये तो अनिवार्य है, कंपल्सरी है। आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सिस्टम बना ही ले कि 7 से 7:30 आधा घंटा शाम को कैसे भी करके टाइम निकाल कर बैठना है योग में, घर गृहस्थ में रहते हुए भी। बता दो सभी को, पहले नहीं संध्या पूजन आरती ये सब करते थे, लोगों को पता होता था इनका पाठ करने का टाइम है, उस वक्त तो फोन भी नहीं करते थे, तो ये इनकी संध्या आरती का समय है। तो ऐसे ही 7 से 7:30 इनका योग का समय है, तो ये इस वक्त फोन नहीं उठाएंगे, उनको पता होना चाहिए। तो उस वक्त फोन उठाने का, बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप 6:30 से 7:30, 7 से 7:30 फोन पर बिजी हैं, इसका मतलब अमृत नुमा शाम का महत्व पता ही नहीं है कि सुबह अगर बाबा चक्र लगाते हैं तो शाम को क्या करते हैं बाबा, खाली बैठे रहते हैं, शाम को भी परिक्रमा करते हैं। लोग तो कहते हैं देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं, संध्याकालीन परिक्रमा देवताओं की, तो आप देवता योग में बैठे और योग में आप परिक्रमा पर निकल गए, कहां पर, सारे ग्लोब को लाइट माइट देने के लिए। तो इसीलिए वो आपकी परिक्रमा है, और आप परिक्रमा पर नहीं जाएंगे तो शास्त्रों में कैसे लिखा जाएगा कि देवता परिक्रमा पर निकलते हैं। तो इसीलिए हर एक का परिक्रमा करना जरूरी है शाम को। तो जैसे यहां आकर नुमा शाम का महत्व पता लगा ना, वैसे वहां भी घर में भी वैसे ही होना चाहिए। नुमा शाम की उतनी इम्पोर्टेंस, आधा घंटा कमरा बंद करके बैठें, बाबा के गीत बजा के बैठें, अव्यक्त बाबा का ड्रिल लगा के बैठें, लेकिन बैठना जरूर है। सारे दिन का बोझ, बातें, चीजें सौंप देनी है, बाबा पर छोड़ देनी है, फिर याद करा लेना है, बाबा ही तो कह रहा है बेटा तू चिंता मत कर मैं बैठा हूं। बात बात पे बाबा याद कराता है, माँ शुच ना, आज बुखार हो गया, आज तबीयत खराब हो गई, चिंता मत करो ठीक हो जाएगी, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी, कल शाम तक ठीक हो जाएगी। क्या कौन सी समस्या है जो नहीं आती है सबके पास, सबके पास आती है, और अपनी ही कमजोरियों से समस्या पैदा होती है बहुत सारी, तो अपनी ही कमजोर संस्कारों का रिजल्ट होता है, अपने कमजोर संस्कारों आदतों के कारण समस्या पैदा हो गई, अब ठीक भी उसको करना है, और बाबा ठीक करने में हेल्प कर रहा है, मुझे सिर्फ माननी है वो बात, मुझे उस कहने को मानना है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है अगर हम इस बात को याद रख लें कि साक्षी होकर रहना है और स्वीकार कर लेना है, जो बातें आ गई उससे टकराना नहीं है। हर पहाड़ को तोड़ नहीं सकते हैं, क्या करते हैं, पहाड़ में से किनारे से रास्ता निकालते हैं, कोई तोड़ता थोड़ी है उसको, उसके किनारे में ठीक ढंग से रास्ता निकालते हैं। एक तरफ खाई होती है, एक तरफ पहाड़ होता है, बीच में से, पूरे पहाड़ को नहीं तोड़ते, बीच में से टनल निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही कितने ऐसे पत्थर होते हैं जिसको सिर्फ आपको पार करके जंप करके जाना है, हर पत्थर को तोड़ने बैठ जाएंगे तो हमारा संगम युग तो इसी में निकल जाएगा। मैं देखता हूं इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए, जबकि आपका कोई काम ही नहीं है उसमें, आप तो सिर्फ साइड हो जाओ, कई तो समस्या आपके कारण ही है, पता लगे टोका टोकी इतनी करते हो घर में, बच्चे समझते हैं यही मेरी समस्या है, माँ बाप ही समस्या है, ज्ञान में चलने लग गए तो टोकना ज्यादा हो गया। आप याद करो जब आप जवान थे और आपको टोका टाकी की जाती थी, आपको अच्छा लगता था क्या? वो दिन भी याद कर लो जो फिल्म देखने जाने को दिल कर रहा हो और पापा ने कह दिया बिल्कुल नहीं जाना, जमाना था ऐसा जो माँ बाप का कहना मानना पड़ता था, या पैसे नहीं होते थे उन्हीं से पैसे लेने हैं, बुरा तो बहुत लगता था, तो सोचो वैसा ही है अब जब बच्चे को कहते हो बेटा मोबाइल नहीं देखना। आप थिएटर में फिल्म देखने जा रहे थे, बेटा मोबाइल पे देखता रहता है। कितना तरीका चेंज करना पड़ेगा, सकाश देके प्यार से तरीके से आपको उसको समझाना पड़ेगा। सिर्फ टोकना डांटना और ज्ञान सुनाने लग जाना, इससे आपकी स्थिति खराब हो जाएगी जब वो आपको कुछ बोल देगा। तो टोकना, बात बात पर समझाने की कोशिश करते रहना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे आपको खुद इस बात से दूर कर देगी कि स्वीकार तो करना ही नहीं आता इनको। पहले ठीक थे जब से ज्ञान में चले ऐसे हो गए। पहले ठीक इसलिए थे कि खुद भी शराब पीते थे, बच्चे भी साथ में बैठ के पी लेते थे। अब खुद सुधर गए, देवता बनने की लाइन में आ गए, छोड़ दिया तो उनके बहुत बुरी तरह पीछे लग गए। अब ऐसा पीछे लगे कि इनको अभी देवता बनाना है, परिवार बिखर गया सारा, ऐसा लोगों के समाचार मिलते हैं। तरीका कितना बदलना पड़ेगा। बाबा ने दुआएं देना, सकाश देना, शुभकामनाएं देना, कितने और तरीके बताए हैं। जब सारा दिन आप दुआएं देंगे उसके बाद एक शब्द बोलेंगे तो उस बातों में भार होगा, वो बात उसको समझ में आएगी। और खुद यहां से खाली है, एंजाइटी में है, परेशान है, टेंशन में है, सिर्फ डांटना ही जानते हैं, तो कैसे उस पर असर होगा। और फिर कहते हैं हम ज्ञान में चले लेकिन हमारे सामने विघ्न बहुत आने लग गए। विघ्न आ रहे हैं अपने ही शब्दों से, अपने ही सोचने से, इसको ठीक करना ही है। तो जो जैसा व्यक्ति है, एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, एक्सेप्ट द पर्सन हु दे आर, वो आपके अनुसार होंगे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसीलिए बाबा ने इतना अच्छा शब्द बोला, साक्षी दृष्टा, और इसके बाद ही होंगे नष्टो मोहा। क्योंकि नहीं तो मोह ही तो है जो दिल करता है कि इसको भी सुधार दूं, उसको भी सुधार दूं, इसको भी सुधार दूं। ये क्या है, मोह ही तो है ना। तो इसीलिए मोह परेशान कर रहा है, उसको ठीक करना चाहते हैं हम। अब इसको ठीक करना चाहते हैं तो अपने आप को आज से पहले ठीक कर ले। खुशनुमा स्थिति, इसका अर्थ है संतुष्टि का लेवल बढ़ा ले। हम लोगों से संतुष्ट हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है सोचने में। हमें होती है शिकायत, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर अपने मन को समझा लेते हैं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो संतुष्टि का लेवल बढ़ाने के लिए भी हमें ये करना पड़ेगा, मुझे खुश रहना है। कितने सीन ऐसे आए जो कि आपने बाद में देखा कि अरे ये तो फायदे के लिए था, उस वक्त क्यों नहीं समझ में आया जब रो रहे थे आप, दुखी हो रहे थे, उस वक्त ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि कितना फायदे के लिए था। लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाती हूं। उस बहन ने जो अनुभव सुनाया और वो जो ज्ञान में चली, आज उसकी क्या स्थिति है। घर में वो इतना लड़ती थी, अच्छे समय पर आज से 25 वर्ष पहले वो 7 बहुएं थी और 7वीं बहू अभी 6 महीने पहले आई थी और एक ही बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी, वो बहुत बड़ी थी। और उसके बाद 7 भाई, वो सोचो वो माँ ही परेशान हो गई, कहती हर 2 साल बाद बेटा हो जाता था, वो चाहती थी कुछ और बेटी होना या क्या होना, या समय ऐसा नहीं था, समझो चलती नहीं थी या कुदरत ऐसी थी, ड्रामा ऐसा था, आना ही था। तो 7 बहुएं कहती कि मैं ही इतनी मशहूर थी, दूसरे नंबर की बहू, बहुत लड़ाकी, बहुत गुस्सैल और प्रसिद्ध थी कि सारी लड़ाई की, घर में क्लेश की जड़ यही है। बात यही शुरू करती है और घर में क्लेश होता है, सास ससुर के साथ, और जो छोटी होती है उनको क्या बोलते हैं, देवरानियां, जो एक जेठानी थी तो उनके साथ, सबके साथ, मतलब गुस्सा इतना ज्यादा था उसमें। तो वो प्रसिद्ध थी इस बात के लिए, और जब बार बार उसको सब एक जैसे थे, डांटते थे, गुस्सा करते थे, तो सब बार बार कहने लगे, तो उसको एक दिन इतना गुस्सा आया कि आज मैं गांव के बाहर वाले कुएं में गिर के मरूंगी। आज मैंने कर लेनी है, सुसाइड कर लेनी है, आत्महत्या कर लेनी है, मैं ही क्लेश की जड़ हूं, मैं गलत हूं, जबकि मैं ठीक हूं, मैं सच्ची बात पे लड़ती हूं, मैं ऐसे करती हूं। मतलब इस बात पे वो बहुत नाराज थी और उसने पानी लाने के बहाने, तब क्या था घर में जो नलका था वो गली में था, कहती घर के अंदर नलके का कनेक्शन नहीं था, गांव में बहुत जगह अभी भी ऐसा होगा, तो वो कलश, उसको टोकनी बोलते थे, वो कलश और बाल्टी वो दो ले ली उसने और सुबह सुबह अंधेरे में वो निकल पड़ी। वो निकली मरने के लिए, आज मुझे जान दे देनी है, कल क्लेश बहुत हुआ था, रात को पूरी रात उसे नींद नहीं आई और बात बात पे यही सुनने को मिला कि सिर्फ तेरे कारण क्लेश हो रहा है घर में, नहीं तो शांति हो जाए। अब वो मरने के लिए निकली हुई है। और मजेदार बात देखिए, नवरात्रों के दिन थे, छोटा शहर वो कस्बा, और उसमें वहां की दीदी ने अमृत वेला योग शुरू किया था 9 दिन के लिए, कि अमृत वेला मीन 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक योग करेंगे, उसके बाद मुरली, ऐसा वहां शुरू किया गया था। तो इसीलिए सफेद कपड़ों वाले भाई बहन काफी थे, 50-60-70 थे उस छोटे कस्बे में, गांव में, तो वो सुबह सुबह जाया करते थे अमृत वेला योग के लिए, योग वहीं करना है 4:30 से 5:30, नवरात्रे स्पेशल योग था। इधर से वो जा रही है गुस्से में, बहुत कलश और बाल्टी लेकर, और उसने कलश भी पकड़ा हुआ है, बाल्टी भी पकड़ी हुई, और अंदर ही अंदर उबल रही है, सारी रात की बातें उसके अंदर बहुत उबल रही हैं और बहुत सोच रही है वो, और बोल भी रही है गुस्से से। और साइकिल पर ऐसा सफेद कपड़ों वाला अच्छा सा भाई जा रहा था, शांत सा। आप शांत हैं? उसने गुस्से में तेज तेज जाते हुए उस साइकिल वाले को टक्कर मार दी। वो यूं जा रहा था, वो यूं जा रही थी, और वो ऐसे टक्कर मारी कि साइकिल वाला गिरा, उसके ऊपर खुद गिरी, उसका कलश, उसकी बाल्टी पीतल की सब वहीं गिर गया, और खूब गुस्से में उसने साइकिल वाले को गालियां दी, उस बीके को, ब्रह्मा कुमार को, है ना, दिखता नहीं तेरे को, ये वो हरियाणवी में खूब गालियां दी उसने उसको। गुस्सा गुस्सा तो था ही, कोई भी सामने आए, और वो बड़ी शांति से उठ के उसको दृष्टि देने लग गया, देखने लग गया उसको, क्या हुआ माता जी, मर गई तेरी माता जी, मैं माता जी लागू तेरे को, मरने जा रही हूं। वो कहते हैं, आप सुबह सुबह कहां जा रही हैं, मरने जा रही हूं, और सुबह कोई कहां जाता है, मरन जा रही हूं, कहती। तो ऐसे गुस्से से उसने बोला, तो उसने कहा, चलो आपने मरने का सोच ही लिया तो मरने से पहले आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह दिखाता हूं, वहां भी मरना ही है, कहते वहां भी मरना ही है, हम भी सब जीते जी मरे हुए हैं, देखो हम सफेद कफन पहन के घूम रहे हैं। तो बड़ा अच्छा उसने प्यार से ज्ञान सुनाया, कहता देखो अब कफन पहन के घूम रहा हूं मैं भी मरा हुआ हूं, चलिए आप चलिए। तो कहते उसकी बात सुन के मुझे हंसी आ गई, वो माता को हंसी आ गई और वो उसके पीछे पीछे चल दी। देखो भगवान का तरीका, देखो उसको पकड़ने का, कि वो उसके पीछे पीछे गई और चुप करके बैठ गई। वो इतनी शांति, इतना सन्नाटा था, लाल लाइट थी, और वो वहां जाकर बैठ गई। पूरा 1 घंटा वो बैठी रही, मन एकदम शांत हो गया, जो इतना क्रोध उबल रहा था उसके अंदर। 5:30 योग पूरा हुआ, उसके बाद उसने मुरली सुनी, कुछ नहीं समझ में आ रहा मुरली का, वो मुरली सुनती रही मीठे बच्चे कह के, जो जो बात 2-4 उसको समझ आई उसने सुन ली। उसके बाद बहनजी ने उससे बातचीत की, प्यार से उसको चाय पिलाई, उसको टोली खिलाई, नमकीन मीठी दो तरह की, और फिर उसको कोर्स कराया। वो सुबह 4 बजे की घर से निकली हुई, 4:30 उसने टक्कर मारी, और उस टक्कर के बाद वो 8 बजे घर वापस आई है। और वो दिन उसका इतना अच्छा बीता, इतनी खुश, सुबह अगले दिन 4 बजे कलश और बाल्टी लेके फिर निकल गई वो, और वो वहां जाके खड़ी हो गई, ढूंढती रही उसी भाई को, वो कब निकलेगा यहां से, थोड़ा जल्दी चली गई। बस वो भाई वहीं मिला, उसके साथ साथ गई, पहले योग, फिर मुरली, फिर कोर्स। उसको पता लगा बहन जी तो रोज ही चाय पिला रही है, बड़ी अच्छी बहन जी है, अगले दिन बाल्टी में दूध भी भर के ले गई वो, भाई रोज ही चाय पीनी है तो दूध तो ले जाऊं अपने घर से, मंदिर की चाय पीना अच्छी बात नहीं होती, तो ये तो सब में भावना होती है। तो इस तरह से 1 महीने तक सारे घर वाले हैरान, सुबह जल्दी निकलती है, 8 बजे आती है और बंदा चेंज हो गया बिल्कुल, परिवर्तन। आज उस घर की 6 कन्याएं समर्पित है। आप सोचो 40 जनों की क्लास है उसकी, एक ही परिवार के 40 लोग ज्ञान में है। कितनी सेवा की, सारी देवरानियां, जेठानियां, सास, नंदे, नंदों की बेटियां, अपनी बेटियां, ये वो सब सब का कल्याण हो गया। बाबा ने कैसे करना था? तो इसीलिए अगर मन में बाबा के पास सौंप दिया तो बाबा के पास प्लानिंग होती है। बड़ी बात यह है कि उस वक्त उस टक्कर में कल्याण नजर आया उसको, पहले दिन ही नजर आ गया। और हमें छोटी सी कोई बीमारी आ जाती है, छोटी सी कोई बात आ जाती है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, उसमें कल्याण नजर नहीं आता। जो हम कल बात कर रहे थे कि अभी बोला तो अभी कर्जा उतर गया, अभी सहन कर लो, संभालो, ये वाली सजा थोड़ी है। और अगर रिएक्ट किया तो धर्मराज की सजा बहुत 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 कड़ी है। धर्मराज के डंडे खाने से अच्छा है इसकी बातें सुन लो, इसकी सुन लो, उसकी सुन लो, चार बातें इसकी सुन लो, बहुत सस्ती है तो। लेकिन डंडे खा के जाना पीछे पीछे बरातियों के बीच में तो अच्छा नहीं है भूत बन के। तो इसीलिए वो लेके तो जाएगा, या सजा के या सुजा के, डंडों से तो सूजेगा ना फिर वो। तो इसीलिए अपने आप को हम तैयार कर लें कि मुझे बाबा के साथ वैसे ही निर्विघ्न और खुशनुमा स्थिति में जाना है। क्योंकि बीके तो वही है जिसे फीलिंग नहीं आती, जिसे क्रोध नहीं आता, जो परेशान नहीं होता, जो टेंशन नहीं लेता, ना टेंशन देता है किसी को, बीके तो वही कहलाता है। अमृत वेला योग तो करना ही पड़ेगा उसको, वो तो है ही है कंपल्सरी आइटम। तो वो बीके मीन्स जिसकी खुशनुमा स्थिति से सेवा होती रहती है। उसको कोई कहने थोड़ी आएगा आप थोड़ा खुश रहा करो। और आप बीके होके कोई ये कहे मैनू तो, मुझे तो बड़ी टेंशन है, कैसा लगेगा सुन के? आप तो बोल भी नहीं सकते शर्म के मारे बात किसी को कि मुझे टेंशन है, मैं परेशान हूं, मुझे थोड़ा चिंता हो गई है, ये तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब उसको जल्दी से ठीक कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक ही ऑप्शन है आपके पास, हर्षित रहना, खुश रहना, संतुष्ट रहना, नो अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो इसीलिए ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए आप यहाँ आए हैं, और ऐसी स्थिति आपकी सदा बनी रहे, जितना संगम युग बचा हुआ है एक सेकंड भी ये स्थिति खराब ना हो, ऐसी स्थिति सदा बनी रहे, इसके लिए हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, ओम शांति। अब भाइयों का योग बहुत अच्छा है, वो 15 मिनट बहुत पावरफुल योग करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने आप 7:15 का टाइम देखकर शांति से धीरे से फरिश्तों की तरह उठेंगे, पीछे की 4 लाइन, फिर उसके आगे की 4 लाइन, फिर उसके आगे की, आगे वाले पहले नहीं उठेंगे, ठीक है? पीछे वालों को घड़ी दिखाई दे रही है, अपने अपने मोबाइल में दिखती है सबको, है ना, घड़ी भी होगी पहनी हुई। तो पहले पीछे वाले 4 लाइन वाले उठेंगे, वो धीरे से जाएंगे 7:15 बजे से, ऐसे भाई उठना शुरू हो जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? सुखधाम में, आपको सुख मिलेगा वहां, इतना आपने क्लासेस की, इतना योग किया तो उसका सुख मिलेगा। उसके बाद 7:30 के रिकॉर्ड के बाद माताएं बहनें भी धीरे धीरे जाएंगी, ठीक है? तो अभी एकदम एकाग्र होकर, एकदम स्थित होकर योग करेंगे। इधर भाई है क्या? भाई कमेंट्री से योग कर सकते हैं ना, बाहर तो नहीं जाएगा ना बस, ठीक है? मैं सहन शक्ति और समाने की शक्ति से भरपूर पावरफुल आत्मा हूं, इस स्वमान में पहले स्थित हो जाएं। अगर ये माताएं टाइट हो रही है तो भले इधर आ जाए इस सोफे पर, कईयों से नीचे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हैं, इधर आ जाए, ये वाले सोफे पर आ जाए। हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, त्याग कर देते हैं माताओं के लिए। हाँ इधर बैठ जाओ। शांत, हर्षित मुख। अपनी शक्तिशाली स्टेज को खुद पहचाने और उसमें स्थित हो जाएं। महसूस कीजिए मस्तक में विराजमान मैं होनहार देवता होनहार देवी संगम युग के अपने बचे हुए शेष कार्य को संपन्न कर रही हूं। शरीर की कुटिया में बैठा हुआ मैं तपस्वी हूं। अब इस कुटिया से निकलकर मैं चमकीली आत्मा लाइट की ड्रेस में एकदम लाइट सूक्ष्म लोक में सुंदर लाइट के सिंहासन पर अव्यक्त बाप दादा विराजमान है। हम सब चमकीले वेशधारी फरिश्ते बाप दादा के चारों तरफ चमकती ज्योति की तरह विराजमान है। चारों तरफ सुंदर चमकीली विजय माला सभी सुखदाई फरिश्ते बाबा के चारों तरफ जैसे बाबा के गले का हार है सभी फरिश्ते बाप दादा के सम्मुख आते हैं, एक एक फरिश्ता बाबा के बहुत समीप आता है, बाबा के हाथों में हाथ, कितना सुंदर लाइट का स्पर्श, ब्रह्मा बाप के लाइट के शरीर में, मस्तक में शिव बाबा विराजमान, आप फरिश्ते को दृष्टि दे रहे हैं, एक एक फरिश्ते के मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, ये विजय का तिलक आप हर फरिश्ते के मस्तक पर चमक रहा है, फिर से अपना स्वमान याद कर लें, मैं निर्विघ्न हर्षित मुख खुश नसीब सुखदाई फरिश्ता हूँ, इसी शांत और सुंदर फरिश्ता स्थिति में धीरे से केवल भाई फरिश्ता स्वरूप में खड़े होंगे, एक दूसरे को दृष्टि देते हुए दो दो की जोड़ी में, एक दूसरे को दृष्टि देते हुए मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखेंगे, अपना साथी ढूंढ लें आगे पीछे, जिनको बगल में साथी ना मिले पीछे वाले को देख लें, सिर के पीछे लाइट का क्राउन देखें, मस्तक में चमकती ज्योति देखें, ये मेरे सम्मुख सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान पवित्र आत्मा है, हम दोनों पवित्र फरिश्ते विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर हैं, इसी शांत और उपराम प्रेम वाली स्थिति में अपने साथी फरिश्ते को चेंज करें, अपने से आगे या पीछे वाले को दृष्टि दें, धीरे से चारों तरफ घूम कर देख लें, अपना साथी बदल लें, ये मेरा, बस एक ही बार बदलना है बस। हम दोनों फरिश्ते विश्व कल्याण की सेवा पर तत्पर हैं। केवल मस्तक में चमकती हुई ज्योति देखें, इसी फरिश्ता स्थिति में आंगन में सबको सकाश देते हुए एकदम शांत और मौन स्थिति में अपना अपना सामान या बैग उठाकर सभी खड़े हुए फरिश्ते पीछे से धीरे धीरे हॉल से बाहर जाएंगे। बाबा को थैंक्स बोलेंगे, पहले बाबा की तरफ फेस करें, पीछे की दो लाइन बाहर निकलना शुरू करें, चप्पल जूते पहनते हुए भी फरिश्ते, अपना सामान उठाते हुए भी फरिश्ते, वहां जाकर भोजन करते हुए भी फरिश्ते, कोई आवाज नहीं, एकदम शांत। अब सभी पीछे मुड़ेंगे, अपना अपना सामान उठाएंगे, धीरे धीरे चलते हुए आंगन में सबको सकाश देते हुए एकदम साइलेंस में प्रस्थान करेंगे। किसी से टकराएंगे नहीं, अपने अपने जूते चप्पल ही पहनेंगे, अपना ही छाता उठाएंगे और सभी प्रस्थान करेंगे। फील करेंगे मैं बाबा के द्वारा तैयार की गई शिव शक्ति सब आत्माओं को राहत देने वाली रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूं। सभी बहनें धीरे से उठेंगे और यहां खुले खुले खड़े होंगे। जो माताएं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती वो सोफे पर बैठकर दृष्टि देंगी, और खुले हो जाएं, दूर तक जाएं। आप दोनों सोफे पर बैठ जाएं। बहुत धीरे चलकर जाएंगे। अब अपना अपना साथी चुन लें। माता जी तरफ घूमकर अपना साथी ढूंढ लें। मस्तक में चमकती हुई मणि देखें। कितनी दिव्यता है आपके चेहरे पर। शक्तिशाली आत्मा की समस्त शक्तियां आपके चमकीले फरिश्ता स्वरूप से प्रकट हो रही हैं। महसूस करें इस सुंदर लाइट की पहाड़ी पर, लाइट के सिंहासन पर प्यारे बाबा विराजमान हैं। इस सुंदर सेना को, शिव शक्ति सेना को, एक एक को दृष्टि देते हुए सिर पर चमकीला ताज पहना रहे हैं। आप सभी ताजधारी परियां इस विश्व रंगमंच पर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली चमकीली परियां हैं। एक दूसरे के सिर पर चमकीला ताज महसूस करें। सिर के पीछे लाइट देखें। हम विश्व कल्याण करने वाली आत्माएं बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले फरिश्ते हैं। इस घर गृहस्थ में रहते हुए, दुनिया में एक्टिंग करते हुए भी आप फरिश्ता हैं। अब अपने से आगे वाले या पीछे वाले फरिश्ते को देखें। चेंज करें जोड़ीदार। हम विश्व कल्याणकारी फरिश्ते संगम युग के अंतिम समय में बस जाने के लिए तैयार हैं। रिटर्न जर्नी, इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, बाबा की तरफ फेस करेंगे। प्यारे बाबा, मैं आपकी सच्ची गोपिका हूं। आपकी लाडली आत्मा हूं। प्यारे बाबा, एक आप ही मेरा संसार हो, इस दुनिया में बाकी सब के साथ केवल रोल प्ले कर रही हूं। सच्ची पार्वती हूं, केवल भोला नाथ ही मेरा है। थैंक्स बाबा, इतनी सुंदर संध्या में इतने प्यार की पालना देने के लिए शुक्रिया बाबा। अपनी गोपिका बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। बैठ जाएंगे सभी। अभिमानी अवस्था, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मैं और बाबा ज्ञान सूर्य बाबा के किरणों के नीचे स्वयं को महसूस करें। एकदम साइलेंस, शांत, मैं आत्मा केवल परम धाम में हूं। केवल बाबा ही संसार है।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन फल सरकार।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
संगम युग में परम पिता जी कहते हैं ये राज।
तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज।
सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का कार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।